टाइगर उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने कार के पार्टीशन ऑन कर दिए थे, इस वजह से आस्था के चिल्लाने की कोई आवाज वो सुन नहीं पा रहा था। और सीधा अस्पताल के सामने उसने कार रोक दी। वहीं दूसरी ओर राजवीर सिंघानिया ने वंशिका की पूरी जानकारी पता लगा ली थी। उसे पता चल गया था कि वंशिका कहाँ रहती है और किस मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। सारी जानकारी उसने जुटा ली थी, लेकिन अभी तक उसे ये पता नहीं चल पाया था कि आखिर उसने वंशिका का क्या बिगाड़ा था। वो बस जल्द से जल्द सारी बातें जानकर वंशिका को मौत के घाट उतार देना चाहता था, ताकि वंशिका एक बार फिर उस पर हमला करने के बारे में सोच ना सके। राजवीर सिंदल सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपनी मौत वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ अभी और जीना चाहता था। अब राजवीर सिंदल सीधा वंशिका के उस घर पर पहुंच चुका था जहां पर ऑलरेडी कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि वंशिका तो बहुत पहले ही अरमान सिंघानिया के मेंशन में जा चुकी थी। अब राजवीर पूरी तरह से परेशान हो चुका था। राजवीर सिंदल अपनी कार की सीट पर पीछे सिर टिकाकर कुछ सोच रहा था। उसका चेहरा गुस्से और बेचैनी से भरा हुआ था। इतने सालों में न जाने कितने दुश्मनों से वो निपट चुका था, लेकिन वंशिका वो उसके लिए एक रहस्य बन चुकी थी। एक लड़की जो बिना किसी बड़ी वजह के उस पर हमला कर गई, और वो भी जानलेवा। क्या वो वाकई वो नॉर्मल इंसान है, उसने खुद से पूछा। अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। कॉल उसके खास आदमी रॉकी का था। रॉकी ने अपने शब्दों में उसे कुछ बताना शुरू कर दिया था। अब राजवीर को समझ आ चुका था, ये मामला केवल बदले या दुश्मनी का नहीं था। वंशिका के पीछे कुछ और भी है, कोई ऐसा सच जो अब तक उसकी पकड़ से बाहर था। कार जैसे ही अंधेरी सड़क पर सरकने लगी, राजवीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, नफरत और जिज्ञासा की मिलीजुली आग, क्योंकि वो हर हाल में वंशिका का पता लगाकर वो उसकी जान लेना चाहता था। फिलहाल उसने अपने कुछ आदमियों को सक्रिय कर दिया था कि वे हर हाल में वंशिका की खबर ला कर दें। उसके बाद वंशिका जहां भी रह रही होगी, वहां जाकर वो वंशिका की जान ले लेगा और उसे ऐसी मौत देगा जिसके बारे में कि कोई सोच भी नहीं सकेगा। वहीं दूसरी ओर नानी माँ को कमरे में ले जाकर रश्मि ने उन्हें थोड़ी देर बाद एक और इंजेक्शन लगा दिया था, जिसकी वजह से उन्हें नींद आ गई और एक बार फिर वे अच्छी तरह आराम कर सकी, क्योंकि नानी माँ ने उठने के बाद से काफी स्ट्रेस फेस किया था और उनके लिए ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था, क्योंकि उनकी हालत अभी इतनी ठीक नहीं थी कि वे इस तरह की कोई बात बर्दाश्त कर सकें। तो इसीलिए रश्मि चाहती थी कि नानी माँ जितना हो सके आराम करें। अगर वे आराम करेंगी तो एकदम परफेक्टली ठीक होंगी। वैसे भी रश्मि और बाकी सबको नानी माँ से कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट हो गया था, तो नानी माँ को वो लोग परेशान नहीं देख सकते थे। फिलहाल तो नानी माँ को सुलाने के बाद रश्मि बाहर आई और बारी बारी से सबकी ओर देखते हुए बोली, आखिर ये सब हो क्या रहा है? अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार था हमारा, पता नहीं किसकी नजर लग गई। और आस्था को क्या हुआ है, और आस्था इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? इस बीच अविनाश और अबीर सिंह राठौर वहां मौजूद नहीं थे, क्योंकि अगर वे कहीं थे तो वे सिर्फ राजवीर जिंदल को मारने की प्लानिंग में थे। साथ साथ वे इस बात के बारे में भी सोच रहे थे कि आखिर वंशिका के साथ क्या हुआ है, वो राजवीर की जान क्यों लेना चाहती थी। तब अबीर ने अविनाश की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है वंशिका ने सारी बातें आस्था को बताई होंगी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम देखा था कि वे दोनों आपस में बातें कर रही थीं, और शायद इसीलिए आस्था वंशिका को अपने साथ ले गई है। तो अविनाश बोला, लगता है मुझे अब जाकर सीधा आस्था से मिलना पड़ेगा, उसके मन में क्या चल रहा है उससे जानना होगा, साथ ही साथ उस डेविल किंग के बारे में जो सच उसके सामने आया है उसके बारे में भी उससे बात करनी होगी, क्योंकि इस वक्त मेरी बहन को मेरी जरूरत है। क्योंकि अविनाश बहुत पहले ही आस्था के साथ जाना चाहता था, लेकिन आस्था बिना किसी को बताए सिर्फ रश्मि को बताकर वहां से चली गई थी, इसीलिए अविनाश को उसके साथ जाने का मौका नहीं मिला था। लेकिन जब उसे ये पता चला कि आस्था इस वक्त सिंघानिया मेंशन में है, तो वो फटाफट से वहां जाना चाहता था, इसीलिए वो सीधा अस्पताल के एग्जिट गेट की तरफ जाने लगा। लेकिन ठीक उसी वक्त टाइगर अपनी गोद में आस्था को उठाकर वहां ला रहा था। ये देखकर अविनाश के माथे पर बल पड़ गए थे और वो टाइगर को घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को इस तरह से उठाने की? हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। तब टाइगर बेपरवाही से अपने कंधे उचकाकर उसके सामने से ही आस्था को लेकर जाने लगा। अब तो अविनाश का पारा बढ़ चुका था और उसने अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बंद कर ली थी और एक जोरदार मुक्का टाइगर के मुंह पर दे मारा था। टाइगर के नाक और होठों के पास से खून निकलना शुरू हो गया था, लेकिन उसके चलने की तेजी में इतनी सी भी कमी नहीं आई। अबीर तुरंत अविनाश को रोकते हुए बोला, तुम उसे खड़े खड़े मार भी दोगे तो भी वो नहीं रुकेगा। अगर अरमान सिंघानिया ने उसे ये काम दिया है तो वो मरकर भी पूरा करेगा, क्योंकि अबीर सिंह राठौर टाइगर के बारे में काफी कुछ अच्छी तरह से जानता था और टाइगर कितना वफादार था ये बात भी वो अच्छी तरह से जानता था। अब अबीर की बात सुनकर अविनाश अपना मन महसूस कर रह गया था और वो अबीर को घूरते हुए बोला था, एक बार ये टाइगर वापस आ जाए तो मैं इसे बताऊंगा कि अविनाश राजवंशी क्या चीज है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलते हुए अविनाश का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वहीं दूसरी ओर अब रश्मि जैसे बारी बारी से सब लोगों से आस्था के बारे में बात पूछ रही थी कि आखिरकार आस्था को हुआ क्या है, कोई कुछ बताएगा? अब सभी लोग हैरान थे। तभी आकाश बोला, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें खुद समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आस्था को क्या हुआ है और वो वंशिका को क्यों बचा रही है। वंशिका को देखते ही मेरा तो खून पूरी तरह से खौल रहा है, भला वो इस तरह से मेंशन में आकर हम लोगों की आंखों के सामने रह रही है, वो भी हमारे अरमान पर हमला करने के बाद। तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो कि इस वक्त मुझे कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। कहीं ना कहीं ये कहते हुए आकाश का पारा पूरी तरह से चढ़ चुका था और तभी सुमित भी आग उगलते हुए बोला था, जबकि वंशिका ने अरमान पर हमला करने की कोशिश की है फिर भी वो यहाँ हम लोगों की आंखों के सामने रह रही है। सभी का गुस्से के मारे बुरा हाल था, क्योंकि वंशिका का सच सिर्फ अभी आस्था ही जानती थी और कोई नहीं जानता था, तो सब लोगों को अभी भी वंशिका गलत ही लग रही थी। लेकिन जैसे ही उन्हें अब आस्था के शोर शराबे की आवाज सुनाई देती है तो सबका ध्यान उस ओर चला गया था और उन्होंने देखा कि अस्पताल के कॉरिडोर से टाइगर आस्था को गोद में उठाकर लेकर आ रहा था और अविनाश गुस्से से टाइगर के पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था और उसे कोस रहा था। अब ये सब देखकर सब लोगों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब एक दूसरे की शक्ल हैरानी से देखने लगे। वहीं रश्मि राधिका तुरंत टाइगर के सामने जाकर खड़ी हो गई थी और उसे रोकते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो टाइगर, तुम आस्था को छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आस्था किस हालत में है, इस तरह से उसे जबरदस्ती लेकर आना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। रश्मि की डांट सुनकर भी टाइगर पर किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके लिए सिर्फ अरमान का हुक्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। वेल, तब आकाश ने रश्मि के कंधे पर हाथ रख दिया था, मानो उसे कह रहा हो कि तुम्हें अब चुप रहना होगा, क्योंकि टाइगर को रोक पाना भैंस के सामने बीन बजाने के बराबर है।
अब जल्दी ही टाइगर आस्था को गोद में लेकर अस्पताल सीधा अरमान के कमरे यानी हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में चला गया था। इस बीच आस्था ने टाइगर को खा जाने वाली नजरों से देखा था, जिसमें उसकी आंखों में खून टपक रहा था। उसका दिल कर रहा था कि अभी इसी वक्त इस टाइगर भैया को अच्छा खासा सबक सिखा दे। हालांकि आस्था गुस्से में थी, लेकिन अभी भी उसके मुंह से टाइगर के लिए भैया ही निकल रहा था और वो लगातार उसे पीटते हुए उसके चेस्ट पर, उसके हाथों पर बहुत सी मार भी बरसा रही थी। वो बोल रही थी, टाइगर भैया, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, हम आपको किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए मुझे, अभी भी आपके पास वक्त है, हमें जाने दीजिए। लेकिन टाइगर तो टाइगर था, वो भला उसकी बात कहाँ सुनने वाला था। वहीं दूसरी ओर रौनक मुंह फुलाकर इस वक्त अस्पताल के कॉरिडोर के बराबर में जो स्टोर रूम था उसकी खिड़की के पास खड़े होकर बाहर जो पार्क था वहां का नज़ारा देख रही थी। ठीक उसी वक्त आहान पीछे से आया और रौनक को इस तरह से खोया हुआ देखकर एक पल के लिए उसे देखा, क्योंकि खिड़की के पास खड़े होने की वजह से रौनक के बाल उड़कर उसके गालों को छू रहे थे, जो उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। कुछ देर आहान उसे देखता रहा और एक बार खुद को आहान रोक नहीं पाया और जल्दी से एक बार फिर उसने रौनक के गालों को किस किया। रौनक को जैसे ही अपने गालों पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुईं और उसने घूरकर आहान को देखा तो वो गुस्से से तिलमिला उठी थी और उसे मारने के लिए हाथ उठाने लगी और उसे फटकारते हुए बोली, छछूंदर कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक बार फिर मुझे किस करने की। तब आहान तुरंत रौनक के हाथ को पकड़कर उसके कमर के पीछे लगाता हुआ उसे अपने आप से सटा लिया था और मदहोशी भरी आवाज में बोला, मैं क्या करूं, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। देखो बंदरिया, तुम प्लीज मुझे गलत मत समझो, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं खुद को रोक नहीं पाता हूं। मेरे यकीन जानो, मैं खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे ही आहन ने कहा, रौनक पूरी तरह से चौंक गई थी। एक पल को आहन की इस तरह की बात सुनकर उसके गाल भी ब्लश करने लगे थे कि सीधे सीधे तरीके से यहाँ आहन अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। लेकिन उसे कुछ समझ।
अब जल्दी ही टाइगर आस्था को गोद में लेकर अस्पताल सीधा अरमान के कमरे यानी हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में चला गया था। इस बीच आस्था ने टाइगर को खा जाने वाली नज़रों से देखा था, जिसमें उसकी आंखों में खून टपक रहा था। उसका दिल कर रहा था कि अभी इसी वक्त इस टाइगर भैया को अच्छा खासा सबक सिखा दे। हालांकि आस्था गुस्से में थी, लेकिन अभी भी उसके मुंह से टाइगर के लिए भैया ही निकल रहा था, और वो लगातार उसे पीटते हुए उसके चेस्ट पर, उसके हाथों पर बहुत सी मार भी बरसा रही थी। वो बोल रही थी, टाइगर भैया, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, हम आपको किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए मुझे, अभी भी आपके पास वक्त है, हमें जाने दीजिए। लेकिन टाइगर तो टाइगर था, वो भला उसकी बात कहाँ सुनने वाला था। वहीं दूसरी ओर रौनक मुंह फुलाकर इस वक्त अस्पताल के कॉरिडोर के बराबर में जो स्टोर रूम था, उसकी खिड़की के पास खड़े होकर बाहर जो पार्क था वहां का नज़ारा देख रही थी। ठीक उसी वक्त आहन पीछे से आया और रौनक को इस तरह से खोया हुआ देखकर एक पल के लिए उसे देखा, क्योंकि खिड़की के पास खड़े होने की वजह से रौनक के बाल उड़कर उसके गालों को छू रहे थे, जो उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। कुछ देर आहन उसे देखता रहा और एक बार खुद को आहन रोक नहीं पाया और जल्दी से एक बार फिर उसने रौनक के गालों को किस किया। रौनक को जैसे ही अपने गालों पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुईं और उसने घूर कर आहन को देखा, तो वो गुस्से से तिलमिला उठी थी और उसे मारने के लिए हाथ उठाने लगी और उसे फटकारते हुए बोली, छछूंदर कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक बार फिर मुझे किस करने की। तब आहन तुरंत रौनक के हाथ को पकड़कर उसके कमर के पीछे लगाता हुआ उसे अपने आप से सटा लिया था और मदहोशी भरी आवाज में बोला, मैं क्या करूं, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, देखो बंदरिया, तुम प्लीज मुझे गलत मत समझो, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं खुद को रोक नहीं पाता हूं। मेरे यकीन जानो, मैं खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे ही आहन ने कहा, रौनक पूरी तरह से चौंक गई थी। एक पल को आहन की इस तरह की बात सुनकर उसके गाल भी ब्लश करने लगे थे कि सीधे सीधे तरीके से यहाँ आहन अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो रौनक को कह क्या रहा है। वहीं जल्दी से रौनक अपनी सेंस में वापस आते हुए बोली, जस्ट शट अप, मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी हरकत करने की। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझसे दूरी बनाकर रखो और मुझे 10 किलोमीटर दूर रहा करो, समझे तुम? अगर तुम्हें मुझसे कोई बात भी करनी है तो 2 किलोमीटर दूर रहकर बात किया करो। अब रौनक की इस तरह से दूर रहने की बात सुनकर ना जाने आहन को क्या हुआ, उसने फटाफट से उसके बालों को कस कर पकड़ा, अपने होठों को उसके होठों से जोड़ दिया था और उसे डीपली किस करने लगा। अब तो रौनक के हाथ पैर पूरी तरह से फूल गए थे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आहन इस तरह का कोई कदम उठा लेगा। वो सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगी थी, लेकिन इस वक्त आहन तो बस किसी न किसी तरह से रौनक को शांत करना चाहता था। लेकिन तभी जैसे ही आहन को इस बात का एहसास हुआ कि रौनक किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स या कुछ भी नहीं कर रही है, तो उसने रौनक को छोड़ा। उसे देखकर अब आहन की चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि रौनक उसी की बाहों में झूल गई थी और वो बेहोश हो गई थी। वहीं दूसरी ओर जैसे ही टाइगर ने आस्था को अरमान सिंघानिया के ठीक सामने ले जाकर खड़ा किया, अरमान जो कि बेसब्री से आस्था के आने का इंतजार कर रहा था, आस्था को टाइगर की गोद में देखकर उसे घूर कर देखने लगा। वहीं तुरंत टाइगर अरमान की नजरों को भांपकर उसने आस्था को तुरंत गोद से नीचे उतार दिया और सर झुकाकर एक तरफ खड़ा होकर बोला, माफ कीजिएगा किंग, मैंने क्वीन को छुआ है, लेकिन क्वीन आने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन उन्हें जबरदस्ती लेकर आना पड़ा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिएगा किंग, मैं खुद को इसकी सजा जरूर दूंगा। अरमान का रूम, क्योंकि एक प्राइवेट रूम था, यहाँ पर हर तरह की सुविधा, आईना वगैरह सब मौजूद थे। अचानक टाइगर ने आगे बढ़कर अपना सर जोरों से कांच पर पटक दिया था। अब तो आस्था जोरों से चीख उठी। आस्था ने अभी तक अरमान को नहीं देखा था, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अरमान को देख सके। ये उसकी नफरत थी या मोहब्बत थी या फिर उसके दिल की अजीब सी कश्मकश थी, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। वहीं अरमान टाइगर को इस तरह से खुद को सजा देता हुआ देखकर एक तिरछा सा मुस्कुराया और तभी आस्था अपने कानों पर हाथ रखकर जोरों से चीखते हुए बोली, जस्ट स्टॉप इट, बंद करो ये ड्रामा।
अब जैसे ही अरमान ने आस्था की बात सुनी, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज अरमान को आस्था की आवाज में सिर्फ तड़प सी महसूस हो रही थी। तभी अचानक आस्था ने लाल आंखों से अरमान की ओर देखा। अरमान भी आस्था को ही देख रहा था। दोनों की नजर एक दूसरे की नजरों से टकरा गई थी और दोनों एक दूसरे को देखते रहे थे। ठीक उसी वक्त टाइगर ने एक बार फिर खुद को हर्ट किया और खून से लथपथ चेहरा लेकर उस रूम से बाहर निकल गया था और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया था, ताकि आस्था बिना अरमान की परमिशन के बाहर ना निकल सके। वहीं अरमान, जिसका शरीर अभी साथ नहीं दे रहा था, लेकिन आस्था को सामने देखने के बाद वो उठकर बैठने की कोशिश करने लगा था, लेकिन उसके पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई थी। आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।